यरमाया अध्याय 13, यरमाया अध्याय 13 पद 1 से लेकर 7 तक। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक पेटी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक पेटी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा कि जो पेटी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे परात के तीर पर ले जा और वहां उसे कडंडे पर की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको परात के तीर पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ फिर परात के पास जा और जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी उसे वहां से ले ले। तब मैं परात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने पेटी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया और देखो पेटी बिगड़ गई थी, वो किसी काम की ना रही। आप खुद करके देख सकते हैं। एक मलमल के कपड़े को यदि आप किसी चट्टान के नीचे रख दे और कुछ समय बाद जाकर उसे निकाले तो आप पाएंगे कि दीमक उसे खा गई है, अब वो किसी काम का नहीं रहा। परमेश्वर ने यरमाया से कहा, परंतु तू उस दीमक लगे वस्त्र को पहन और सड़कों पर चल तथा लोगों में प्रचार कर। लोगों ने उसके इस मलमल वाले वस्त्र को पहले देखा था कि कितना अच्छा था। देखो यरमिया का वो वस्त्र कैसे अच्छा है। अब जब वो उसी वस्त्र को फटी अवस्था में पहनकर बाहर निकलेगा तब वे कहेंगे, वो कैसे मैला कुचला सड़ा गला वस्त्र पहन रहा है। सत्य तो ये है कि ये उनके लिए एक स्पष्ट उपदेश था। यरमाया अध्याय 13 पद 8 से लेकर 12 तक। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस पेटी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इसराइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। इसलिए तू उनसे ये वचन कह। अब वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रवेश करता है। कमरबंद की उपमा का अर्थ है इसराइल और यहूदा एक समय परमेश्वर के साथ बंधे थे। जब तक वे परमेश्वर के साथ बंधे हुए थे तब तक वो एक रमणीय देश था। वे एक ऐसी प्रजा थे जो परमेश्वर की आराधना करती थी, परमेश्वर की सेवा करती थी और परमेश्वर के साथ एक थी। जब वे परमेश्वर से संबंध विच्छेद कर चुके तब वो रमणीय और वैभवशाली राष्ट्र कुरूप और घृणित हो गया। वो देश जो परमेश्वर के प्रेम और आशीषों के कारण कभी पृथ्वी की गरिमा था, वो आज पृथ्वी के लिए श्राप बन गया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर लिया है। वे किसी काम के नहीं रहे। एक रोचक पुस्तक है, द लाइट एंड द ग्लोरी, ज्योति और महिमा। इसमें अमेरिका का ऐतिहासिक मूल खोजा गया है। और निष्कर्ष ये निकाला गया है कि उस राष्ट्र की स्थापना करने में परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य था, जैसा कि इसराइल राष्ट्र की स्थापना में परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य था। उसके पैतृक स्तंभों पर परमेश्वर का अनुग्रह था। ये एक उत्कृष्ट पुस्तक है। शैक्षणिक पुस्तकों में ऐसे विवरण नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि अमेरिका राष्ट्र की स्थापना में परमेश्वर के हस्तक्षेप का अनावरण किया जाए। अमेरिका पर परमेश्वर की आशीषों का कारण यही है कि उसका उदय परमेश्वर की सुइच्छा से हुआ था कि वो जगत की ज्योति ठहरे। यही कारण है कि उनका एक विशेष गाना है, अमेरिका अमेरिका, परमेश्वर ने तुझ पर अपना अनुग्रह उंडेला है और अपनी भलाई को समुद्र से प्रकाशमान समुद्र तक भाईचारे में शिरोमणि कर। उनके अनेक गान हैं जो परमेश्वर के साथ उस राष्ट्र के संबंधों को उजागर करते हैं। प्राचीन लोग मानते थे कि परमेश्वर ने अमेरिका को आशीष दी है तथा महान बनाया है। दुख की बात तो यह है कि इस सच्चाई को आज की पीढ़ी से छिपाया जा रहा है। उनका कहना है कि स्वतंत्र व्यापार ने उन्हें समृद्ध बनाया है। वे तो स्वतंत्र व्यापार और पूंजी के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु मैं तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूंगा जो परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना के लिए दी है। मुझे यही अच्छा लगता है। ये समृद्ध राष्ट्र आज परमेश्वर की दृष्टि में किसी काम का नहीं रह गया है। मैं कनाडा में एक रेडियो कार्यक्रम पर था और आपको आश्चर्य होगा कि वहां अनेक जन मुझसे रुष्ट थे, क्योंकि मैं अमेरिका वासी था। इसका कारण था उनके मन में अमेरिका के विरुद्ध कटुता। मैंने यही कटुता इंग्लैंड में भी अनुभव की। आज संसार का ये प्रतिष्ठित राष्ट्र घृणा का पात्र बन गया है। कुछ ऐसे स्थानों का भी हमने भ्रमण किया जहां लोग हम पर थूकते हैं। वे आपको आपकी वेशभूषा से पहचानते हैं, क्योंकि अमेरिका वासियों का सा पहरावा कोई और नहीं पहनता है। थूकना घृणा और तिरस्कार का एक पूर्वी चिन्ह है। ये कैसी दुखद बात है। इसका कारण है परमेश्वर को त्याग कर तृप्ति और संतुष्टि के लिए अन्य बातों के पीछे जाना। वही वस्त्र जो कभी वैभवशाली था। यरमिया अध्याय 13 पद 12 में दूसरा खतन है जो एक लोकोक्ति के रूप में है। यरमिया अध्याय 13 पद 12। दाक मधु के सब कुप्पे दाक मधु से भर दिए जाएंगे, तब वे तुझसे कहेंगे क्या हम नहीं जानते कि दाक मधु के सब कुप्पे दाक मधु से भर दिए जाएंगे। इस वचन का कारण था कि वहां समृद्धि के संदेश का प्रचार किया जा रहा था, दो गुना समृद्धि का। यरमिया अध्याय 13 पद 13 से लेकर 17 तक। तब तू उनसे कहना, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इस देश के सब रहने वालों को विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा, अर्थात बाप को बेटे से और बेटे को बाप से, यहोवा की ये वाणी है। मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, ना तरस खाऊंगा और ना दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है। अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वो अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वो उसको मृत्यु की छाया में बदल दे, और उसे घोर अंधकार बना दे, और यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़े बंधुआ कर ली गई है। यरमिया को रोता हुआ भविष्यत वक्ता भी कहा गया है। उसके रुदन का ये एक उदाहरण है। परमेश्वर उसे चेतावनी का संदेश दे रहा था, यदि तुम नहीं सुनोगे, वो कहता है, तो मैं अकेले तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। ये एक रोचक कथन है। हम किसी प्रचार को देखते हैं और कहते हैं, वाह, वो तो प्रचार में आग बरसाता है। और यदि कोई प्रचारक परमेश्वर के आने वाले न्याय की प्रचार करता है तो हम कहते हैं, ये प्रचारक घृणा और बकवास के अलावा कुछ नहीं जानता। हो सकता है कुछ प्रचारक ऐसे ही हो, परंतु यरमिया परमेश्वर के भयंकर दंड की घोषणा करते हुए रोता है। वो स्नेह पूर्ण शब्द नहीं उंडेल रहा था। भाइयों, परमेश्वर तुम्हारी ताड़ना करेगा, जरा ठहरो। वो अपने लोगों के हालात पर रो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वे निष्ठुर नहीं सुनेंगे। यरमिया अध्याय 13 पद 18 से लेकर 19 तक। राजा और राजमाता से कह, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभ्यमान मुकुट उतार लिए गए हैं। दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा ना सकेगा, वे घेर लिए जाएंगे। यरमिया अध्याय 13 पद 19 से लेकर 23 तक। संपूर्ण यहूदी जाति बंदी हो गई है, वो पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। वो सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था कहां है? जब वे तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा जिन्हें तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जचा की सी पीड़ाएं ना उठेंगी? और यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी की गई है। क्या हशबी अपना चमड़ा, वो चीता अपने दब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी, जो बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी। अपना स्वभाव बदल लेना मनुष्य के वश में नहीं है। मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बदल सकता है। चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता, क्योंकि ये उसकी प्रकृति है। इसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति पापी है, जिससे केवल मसीह यीशु बदल सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप धर्मी नहीं बन सकते, ये असंभव है। आप में नया स्वभाव प्रत्योपित होना है। एक सुअर को नहला धुलाकर छोड़ दीजिए, उसके गले में फीता बांध दीजिए, उसे सुगंधित द्रव लगा दीजिए, वो क्या करेगा? वो सीधा कीचड़ में जाकर लौटेगा, क्योंकि यही उसका स्वभाव है, इसी से वो खुश रहता है। ऐसा ही मानव स्वभाव है। आप उनको उनके वातावरण से बाहर लाकर लिखाइए, पढ़ाइए और तरीके सिखाइए और एक सुसभ्य वातावरण में रख दीजिए, परंतु जो ही वे मुक्त होंगे त्यों ही वे अपने पूर्व वातावरण में लौट जाएंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। इसलिए स्वभाव का परिवर्तन अति आवश्यक है। इसी कारण यीशु ने कहा, अचंबा मत करो कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें फिर से जन्म लेना आवश्यक है। यही उत्तर है नया जन्म। ये केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही संभव है। वो मेरे स्वभाव को बदलता है। लोग कहते हैं मैं कभी भी मसीही नहीं हो सकता, मैं आडंबर नहीं कर सकता, मैं ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वे मसीह को ग्रहण नहीं करते, उनका कहना है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसमें संदेह नहीं कि ये आपके लिए संभव नहीं, आपसे कोई ऐसी आशा भी नहीं रखता। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसके कार्य के बिना ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वही आपको नया स्वभाव प्रदान करता है। परंतु परमेश्वर क्या करता है? वो मुझे एक पूरा का पूरा नया स्वभाव प्रदान करता है, जो उसका अपना स्वभाव है। आप निश्चय ही ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी शक्ति और क्षमता में असामर्थ हैं। ये काम प्रभु अपने आत्मा द्वारा ही कर सकता है। यही परमेश्वर यहां कह रहा है कि मनुष्य अपनी क्षमता में अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है। ये काम केवल परमेश्वर का सामर्थ कर सकता है। यरमिया अध्याय 13 पद 24 और 25। इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बितर करूंगा जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बितर किया जाता है। यहोवा की ये वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है। यही तो होगा क्योंकि तुम मुझे भूल गए हो। यरमिया अध्याय 13 पद 25 से लेकर 27 तक। इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज जानी जाएगी। व्यभिचार और चोचला और छिनालापन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय! तू अपने आप को कब तक शुद्ध ना करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी?